वो गौर किशोरदास बाबा जी के साथी थे। वैसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के से भी बहुत वरिष्ठ थे वो, तो बहुत ही अवधूत प्रकार के बाबा जी थे। अवधूत मतलब क्या है? हाँ, जो साधारण संसार के समाज के नियमों से परे रहते हैं। साधारण समाज में लोग उनके नियम मर्यादा वगैरह होती है ना, एक पद्धति होती है व्यवहार करने की आदि, वो उसके बिल्कुल परे होते हैं। वैसे दो प्रकार के लोग इस तरह के संसार के नियमों के परे होते हैं। एक वो है जो बिल्कुल अति तामसिक है, शराब पी के पड़ा है नीचे, उसको पता नहीं कपड़े पहने नहीं पहने, फटा हुआ है, गटर में पड़ा है, वो सोचता है मैं कितना सुखी हूँ, ऐसे कुछ भी बात करता है, कभी चिल्लाता है ना, तो उसको कुछ पड़ी नहीं है समाज में लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, वो अपने दुनिया में मस्त रहता है। और दूसरी ओर है ऐसे व्यक्ति जो भगवत भावना के सर्वोच्च शिखर पे पहुंचा हुआ है और इस तरह उसके हृदय में ऐसे भगवान के भक्ति का तूफान उमड़ रहा है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है और उसको परवाह ही नहीं है कि वो कैसे व्यवहार कर रहा है बाहर की दुनिया के हिसाब से। तो ऐसे भी अवधूत होते हैं, इसलिए कभी भी कुछ भी काम कर लेते हैं, कैसे भी कपड़े पहनते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं। परंतु इन ये दोनों प्रकार के लोगों में से जमीन आसमान का फर्क है। पहला व्यक्ति किस प्रकार का है? सबसे पतित व्यक्ति है, और ये दूसरा सबसे ऊंचा। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ऐसे कुछ व्यवहार करें और बोले कि मैं अभी भाव में हूँ, भगवत भाव में हूँ, इसलिए मैं ऐसे अभी बोल रहा हूँ कि कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। तो ये सब नित्यानंद प्रभु भी एक अवधूत बोले, उनका नाम है अवधूत। और श्रीमद् भागवत में और एक उदाहरण आते हैं, अवधूत ब्राह्मण। कौन सा प्रसंग है वो? यदु महाराज, यदु महाराज अवधूत ब्राह्मण, और प्रहलाद महाराज और अवधूत। ऐसे कई अवधूत भागवत में भी वर्णित है जो इस तरह से हुआ करते थे। तो उनकी चेतना हमेशा ऊंची रहती है ना। तो वंशीदास बाबा जी भी ऐसे ही एक अवधूत थे। लेकिन ऐसे आवश्यक नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति में है वो ऐसे अवधूत की तरह ही व्यवहार करे, ऐसे आवश्यक नहीं है। ऐसे नहीं है कि केवल जब वो अवधूत बनेगा तभी हम जान सकते हैं कि ये शुद्ध भक्त बने, ऐसा नहीं। लेकिन कई कई शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं जो कभी कभी ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे कि लोग उनको गलत समझते हैं। नित्यानंद प्रभु ऐसे क्या क्या करते थे? अवधूत उनका नाम क्यों पड़ा? किस तरह के कार्य वो करते थे जिससे कि उनका नाम पड़ा अवधूत?
वो कभी कपड़े नहीं पहनते, कभी कभी
बिना वस्त्र चले जाते थे कभी, ठीक है।
और गंगा
क्या
अद्वैत आचार्य के घर में प्रसाद लेते वक्त उनके ऊपर
अद्वैत आचार्य के साथ प्रसाद ले रहे उधर के घर में प्रसाद ले रहे होते हैं तो उत्पात करते हैं उधर, लेकिन चावल को ये कैसा चावल तुमने दिया हमको, इस तरह के हम बड़े आदमी हैं और तुमने हमको चावल दिया। और फिर अद्वैत आचार्य भी उसी भाव में उनसे थोड़ा वाद करते हैं, वो ही भाव में हम सबको नहीं करना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग जब ज्यादा ही इस तरह से भुलावे के मूड में आते ना, कभी कुछ रख दिया इधर, भूल गया कुछ किया, तो उसको पता ही ना था, पता नहीं कहाँ उसने क्या रखा कुछ किया, तो लोग ऐसे उस मजाक उड़ा के क्या बोलते हैं, अवधूत है, उसको याद ही नहीं कहाँ क्या किया कैसे किया। तो जब वो हरिदास ठाकुर के साथ गए थे ना, नित्या चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को बुलाया और उनको बोला, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, वो प्रसंग पता है ना आपको, प्रसंग प्रसिद्ध प्रसंग है। तो घर घर गया, तो घर घर में जाके सब ये हरि नाम का प्रचार करो, सबसे निवेदन करो कि तुम हरि नाम लो। तो प्रतिदिन वो जाते थे और उनको आदेश था कि शाम को आके उनको बताना है महाप्रभु को कि आज हमने कितना प्रचार किया, कितने लोगों के पास गए, कि कितने लोगों से हमने निवेदन किया कि हरि नाम लो। तो जगह मधाई के पास भी आए, सबने उनको मना किया कि उधर जाना नहीं जाना नहीं, और हरिदास ठाकुर ने भी मना किया इनको, किनको, नित्यानंद प्रभु की मत जाना, लेकिन नित्यानंद प्रभु जानबूझ कर गए। और फिर आप सबको पता है कि क्या हुआ, ये पीछे भाग के आए पहली बार, अब उनकी जान इसलिए बची कि जगह मदाई थोड़ा शराब पी पी के अभी थोड़ा मोटे हो गए थे, इसलिए इतनी तेजी से भाग नहीं पाए, और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु तेजी से भाग के गए। और फिर हरिदास ठाकुर जाके शिकायत करने लगे, किनके पास, चैतन्य महाप्रभु के पास, किनके बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में, आपने मुझे पागल व्यक्ति के साथ भेजा, अभी मैं क्या बोलूं, आज जान हमारी जान बच निकल निकलते छूट हम बच गए, बाल बाल हम बच गए, हम सबने बोला ये जगह मदर के पास नहीं जाना है, जानबूझ के उधर जाता है और इस तरह के कार्य करता है ये, जानबूझ। कभी मैं देखता हूँ तो मगरमच्छ गंगा में तैर रही होती है तो मगरमच्छ के ऊपर जाके छपक के उसके ऊपर बैठ जाता है, और कभी वो छोटी छोटी लड़कियाँ आती है उधर गंगा के तट पे, वो सब अपने पूजा सामग्री लेके तो उनको बोलती है कि आप शिव जी की पूजा करते, मैं महेश हूँ पूजा करो मेरी। तो ऐसे सब कितना सब हरकत करते हैं, तरह तरह से। तो चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और एक बार वो बोलने लगे, नित्यानंद प्रभु इस प्रसंग में नहीं, वो एक मधुशाला में भी जाए, मधुशाला मतलब जहाँ शराब बेचा जाता है, तो ऐसे स्थान में भी वो जाए तो मैं कुछ गलत नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं जानूंगा कि ये प्रचार के लिए जा रहे हैं। लेकिन हम ऐसे नकल नहीं कर सकते। हम वहां गए, बोले क्यों गए थे भाई, मैं प्रचार करने गया था। ऐसे नहीं हम जा सकते। तो ऐसे अवधूत होते हैं। तो वंशीदास बाबा जी भी ऐसे ही अवधूत थे। उनके कमरे में वो कुटिया थी छोटी, उनकी कुटिया तो क्या कुटिया के ऐसे नाम के लिए कुटिया, ऐसे कुछ भी एक बनाया हुआ था, उसमें कुछ घास वास लगा के किया, ऊपर भी छत छेद थे, वो पानी गिरते रहते टपक करते रहता था बारिश में, और उनके गौर निताय के विग्रह थे और उनके पास थोड़े दो चार बर्तन थे, वो भी टूटे फूटे सब पुराने बर्तन, और जो माधुकरी के लिए जाते थे, माधुकरी से जो भी लेके आते थे उसमें पकाते थे अन्न, कोई चावल देता था कोई कुछ देता था, तो उसमें तो थोड़ा कुछ पका के गोदनताई को अर्पण करके खा लेते थे। और उनके घर में कोई दरवाज़ा नहीं था, कुछ नहीं था। तो एक बार जब वो गाय आए वापस घर में कुटिया में, तो उन्होंने देखा कि वो बर्तन ही गायब है। तो उनका जो संबंध गौरनिता के साथ था वो बड़ा निकट का था। हम उसका नकल नहीं कर सकते हैं। आप में से जो सेवा करते हैं अर्चा वगैरह की थोड़ा सावधान रहना। तो जाके उन्होंने गौरनिता को डांटा, अभी तुम लोगों को उपवास करना पड़ेगा, क्यों चुराया बर्तन? मैं कहा आसमान से लेके आऊं तुम्हारे लिए सब सामान, चुराया तुमने इसलिए तुम्हारी खेल है, इसलिए तुमको ही वापस कराना पड़ेगा, नहीं तुम नहीं मिलेगा भोजन तुमको। खुद भी नहीं खाया उन्होंने। नहीं मिलेगा भोजन, नहीं मिलेगा तुमको। फिर गौरनिता डर गए, वो शाम को जब वो बाहर गए थे वापस आए तो देखा कि बर्तन वापस आए। तो कोई चोर ले गया होगा, बाद में उसका हृदय परिवर्तित हुआ होगा कि क्या हुआ, वो बर्तन वापस आ गया। तो ऐसे उनकी लीला होते थे। और जब भी वो घने बादल को देखते थे तो कृष्ण का ही उनको याद आता था। तो इसको कहते हैं उद्दीपना। इस तरह से घने बादल को, बरसात के बादल को देख के कृष्ण का स्मरण आना। अभिनव जलधर सुंदर है, नहीं? जलधर मतलब बादल। तो नया जो अभिनव नया बादल होता है, बादल का रंग कैसे होता है, तो वैसे ही कृष्ण की कांति है। मेघ श्यामल कोमलांगो जयतु जयति, मेघ श्यामल कोमलांगो, कुलशेखर महाराज बोलते हैं। जयतु जयतु जय जयकार उनका, जिनका शरीर कोमल है, सुंदर है, और मेघ श्यामल, श्यामल मतलब सांवला, कैसे सांवला है, मेघ के समान, जो बरसात का मेघ बादल होता है ना डब, उसके समान रंग उनका होता है। तो जब बंशीदास बाबा जी देखते थे तो भाव विभोर होके कृष्ण कृष्ण कह के वो गिर जाते थे। तो ये उद्दीपना, हाँ, इसका एक उदाहरण है। उसी तरह से अंग्रेजी में ये शब्द आपने सुना है, गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट,
हाँ गवर्नमेंट सुना है ना। कितने भक्तों ने सुना है ये शब्द, अंग्रेजी का शब्द होता है गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब है,
सरकार,
सरकार। तो कोई गवर्नमेंट बोलता था उसको गोवर्धन समझते थे, वो गोवर्धन गोवर्धन बोलते फिर वो। चैतन्य महाप्रभु भी जब इसमें रहते थे जगन्नाथपुरी में, तो जब वो समुद्र तट पे जाते थे तो वहाँ जो बालू है, बालू के कभी कभी छोटे छोटे ऐसे पहाड़ होते थे जैसे चाटक पर्वत वगैरह सब, तो उनको देख के उनको गोवर्धन याद आता था। तो दूर से देखते थे गोवर्धन गोवर्धन बोल के वो दौड़ने लगते थे उसको। कभी समुद्र को यमुना समझ के छलांग मार देते थे उस भाव में आके, भाव में। और कितनी बार,
मुकुंद
सरकार
रघुनंदन के पिताजी,
हाँ
उन्होंने भी वो मोर पंख को देखा था,
हाँ
बादशाह के
हाँ। जब वो चूल्हा सुना बताओ,
धूप आया था इसलिए उनके सेवकों ने राजा के ऊपर ढकने के लिए या फैन करने के लिए पंखा देने के लिए मोर पंखों का जो गुच्छा था वो लेकर उनको दिवाने लगे। तो उस समय पर फिर जैसे ही मुकुंद दास ने ये देखा कि मोर पंख उनको दिखाई पड़ा, तुरंत उनको भगवान श्री कृष्ण का याद आया और वो तुरंत मूर्छित होके ऊपर से ऊपर एक जैसे ऊंचे स्थान पे बैठे थे दोनों, वहाँ से ऊपर से नीचे गिर गए। नीचे गिर गए तो बादशाह को लगा कि ये इनका शरीर यानी कि मर गए। फिर वो तुरंत नीचे उतर के स्वयं बादशाह उनको पानी छिड़का के शायद उठाते हैं। तो उठाने के बाद पूछते हैं कि आपको ऐसे क्या हो गया? नहीं, मुझे एक बीमारी एपिलेप्सी लपक आता है शायद, तो इसलिए मैं कभी कभी मुझे ये बीमारी से ऐसे होता है। लेकिन बादशाह समझ गए कि ये भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त है। बादशाह भी बहुत असाधारण व्यक्ति।
बहुत अच्छा, ये भी एक उद्दीपन है। नहीं, ऐसे कई मुकुंद हैं वास्तव में। मुकुंद दास कई हैं, रघुनाथ दास कई हैं भगवान की लीला में। हाँ, क्या हुआ किशन? उद्दीपन हुआ? बादशाह का नाम
सुन के उद्दीपन हुआ?
बादशाह का नाम सुन के उनको उद्दीपन हुआ। उनको बादशाह थोड़ा पसंद नहीं है।
किशोर इधर वहां राजनीति नहीं लाना। और किशोर प्रभु को हिंदू मुस्लिम का बहुत हाँ, इन सब बातों से प्रभावित नहीं होना आप सब। हाँ, भगवान के भक्त किसी से घृणा नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है ना। तो उद्दीपन, उद्दीपक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण पाए जाते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे बहुत वर्णन है। ऐसे है किसी के पास नेक्टर ऑफ डिवोशन जरा लाओ ना। एक अच्छा, यहाँ पे और एक यमुना का और एक नाम क्या है?
कालिंदी।
कालिंदी। और ये नंदिनी शब्द के पहले क्या होना चाहिए?
कालिंद।
कालिंद नहीं, कलिंद है।
कलिंद।
ये हमेशा भक्त लोग ये गलती करते इधर भी। यहाँ पे ये इस किताब में भजन में लिखा है कालिंदी नंदिनी। ये कालिंदी नाम है, कालिंदी नंदिनी नहीं है। कालिंदी नंदिनी मतलब कालिंदी की पुत्री। ये कलिंद नंदिनी है, कालिंद भी नहीं, कलिंद। कलिंद नंदिनी या कालिंदी। कलिंद नंदिनी मतलब कालिंदी। ठीक है। यह अंत में भी अनुवाद में भी कालिंदी कालिंद नंदिनी बताई दे। कलिंद कान में पर्वत है यमुनोत्री के पास, यमुनोत्री के पीछे जहां से यमुना का उद्गम होता है उसको कलिंद पर्वत बोलते हैं। तो कलिंद पर्वत से कालिंदी। हिंदी में है क्या?
नहीं,
अपना किसी के पास होगा ना।
मराठी
है, मराठी तो मराठी चले। ये करो 26 अध्याय का पहला अध्याय पढ़ो और पहला परिच्छेद पढ़ो। शीर्षक क्या है?
अध्याय 26 प्रेमाचे उद्दीपन।
जरा
प्रेमाचे उद्दीपन
का कौन सा शब्द है?
उद्दीपन। काही गोष्टी श्रीकृष्णा विषयीचे प्रेम उत्तेजित करीत असल्यामुळे त्यांना उद्दीपन असे म्हणतात। उद्दीपनात निम्नलिखित गोष्टींचा समावेश होत असतो। भगवान श्रीकृष्णांचे दिव्य गुण, त्यांच्या असाधारण लीला, स्मित हास्य, वस्त्रे आणि माळा, बासरी, श्रृंग, नुपूर, शंख, चरणचिन्हे, वृंदावनासारखी लीलास्थळे, त्यांना प्रिय असणारी वनस्पती तुळस, त्यांचे प्रिय भक्त आणि त्यांच्या स्मृतीच्या तिथी। एकादशी ही कृष्णस्मरणाची एक तिथी आहे आणि त्या दिवशी सर्व भक्त दिवसा उपवास करून रात्रभर कृष्ण लीलांचे गान करीत असतात।
तो ये 26वें अध्याय में भिन्न भिन्न जो उनके उद्दीपन है उनका वर्णन है। तो कितने उद्दीपनों का इधर उल्लेख है? पहला
भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण।
दिव्य गुण, जब कोई भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको अचानक बहुत भाव उत्पन्न हो जाता है। तो पहला वाक्य पढ़ो फिर से इस सूत्र।
काही गोष्टी श्रीकृष्णांविषयीचे प्रेम उत्तेजित करीत असल्यामुळे त्यांना उद्दीपन असे म्हणतात।
तो कोई वस्तु ऐसे होते हैं जो कि कृष्ण प्रेम को उत्तेजित करते हैं हृदय में, हाँ, इसलिए उनको उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या क्या है? पहला श्री कृष्ण के दिव्य गुण, दूसरा
त्यांच्या असाधारण लीला,
असाधारण लीला, तीसरा
स्मित हास्य,
स्मित हास्य, चौथा
वस्त्रे आणि माळा,
वस्त्र आणि माळा। कौन सी माला पहनते हैं?
वैजयंती
माला। वैसे भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे माला पहनते हैं, अलग अलग तरह के माला भी, तुलसी की माला भी पहनते हैं और वैजयंती माला पहनते हैं बहुत, लेकिन अलग अलग मालाएं ये भी उद्दीपन कहलाते हैं कई लोगों को। हाँ, फिर
बांसुरी,
बांसुरी,
श्रृंग,
श्रृंग बजाते हैं ग्वाल बाल खास करके,
नुपुर, शंख,
शंख,
चरण चिन्ह,
चरण चिन्ह, जब चरण देखते हैं अक्रूर जी कैसे भाव विभोर हो गए। अक्रूर जी जब आ रहे थे मथुरा से वृंदावन तो उन्होंने क्या देखा वहां पे? चरण चिन्ह देखे बालू में और तुरंत उठे, उतरे रथ से और लोटपोट करने लगे रज में, और वो रज से अपने शरीर को करने लगे। तो यह भी एक उद्दीपन हो गया, कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर कृष्ण का स्मरण इतना उत्तेजना हो गया शरीर अंदर कि वो भाव विभोर हो गए। फिर
वृंदावन सारखी लीला स्थले,
वृंदावन जैसे लीला स्थली,
त्यांना प्रिय असणारी वनस्पती तुलसी,
तुलसी, तुलसी देख के भी कृष्ण का स्मरण करके उद्दीपन हो जाता है।
त्यांचे प्रिय भक्त,
उनके भक्त, जैसे आप सबको देख के हमको एकदम कृष्ण का स्मरण आता, आप सब अच्छे अच्छे सेवा करते हैं।
त्यांच्या स्मृतीच्या तिथी,
स्मृतीच्या तिथी यथा
एकादशी,
एकादशी ऐसे, हाँ, उद्दीपन के उदाहरण इसी गीत में भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है। सारे के सारे उद्दीपन है ये उनके लिए। तो फिर से अनुवाद पढ़ो ये गीत का, गीत का अनुवाद।
राधा कुंड तट, कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत, यमुना तीर, कुसुम सरोवर, मानस गंगा, कलिंग नंदिनी, यमुनेचे विपुल तरंग, वंशीवट, गोकुल, धीर समीर, वृंदावनातील वृक्ष आणि लता, पशु पक्षी सुगंधित वारा मोर भ्रमर मुरली मुरली विलास वेणु श्रृंग पद चिन्ह मेघमाला वसंत शशांक शंख करताल आदिना युगल विलासाचे अनुकूल जाणून यांना मी लीला विलासाचे उद्दीपक मानतो.
कोण मानत आहेत, कोण मानते असे? भक्ति विनोद ठाकुर मानते हैं कि ये सारी चीजें राधा कुंड का तट है और गोवर्धन यमुना कुसुम सरोवर मानस गंगा और कलिंद नंदिनी मतलब यमुना नदी, फिर यमुना की लहरें, वंशीवट गोकुल धीर समीर और वृंदावन के जितने भी कल्प वृक्ष हैं, लता हैं, पशु पक्षी हैं, वहाँ का सुगंधित हवा है, मोर है, भ्रमर है, मुरली मुरली विलास वेणु श्रृंग भगवान के पदचिन्ह, मेघमाला जब एक के बाद एक आसमान में देखते हैं, वसंत वसंत ऋतु को क्यों उद्दीपक मानते हैं?
क्योंकि वसंत ऋतु में पीले फूल खिलते हैं, पीले फूल सारे फूल खिलते हैं, भगवान कृष्ण का वेश कर पीला रहता है.
नहीं, वसंत ऋतु शरद ऋतु के बाद बहुत ही मधुर ऋतु माना जाता है, ना गर्मी ना ठंडी, और इसमें भी भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं, वसंत रास बोलते हैं, जैसे शरद ऋतु में करते हैं शरद पूर्णिमा के दिवस पर रात्रि में, वैसे यहाँ वसंत रास भी होता है. और फिर शशांक, शशांक का मतलब
चंद्रमा.
तो चंद्रमा को देख के क्या उद्दीपन होता है?
भगवान की आंखें.
आंखें कैसे? वैसे सब कुछ भगवान के चांद चांद के समान ही भगवान है ना,
चंद्रमा
उनका मुखारविंद चांद के समान है. आपको पता है ना चांद की तुलना उनके कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्ण के को 24.5 चंद्रमाओं से की तुलना करते हैं. कौन से हैं कोई बता सकते हैं? उनके 10 चरणों के नख, ठीक है, फिर 10 कर कमलों के नख चंद्रमा पे, ये सब पूर्ण चंद्रमा है. फिर उनका मुखारविंद चंद्रमा, फिर उनके और क्या चंद्रमा है, उनको जो बिंदु है इधर वो आधा बिंदु, शायद वो आधा बिंदु है, आधा चंद्रमा है. और कितना हो गया, 3.5 है. और उनका हसी शायद, फिर उनका ऐसे और 2-3 है. चैतन्य चरितामृत है कि सिंगल वॉल्यूम है क्या इधर? सिंगल वॉल्यूम जिसमें इंडेक्स है वो है क्या? तो कविराज गोस्वामी बताते हैं 24.5 ऐसे चांद की तुलना. इसलिए देखो कृष्ण चंद्र नाम है ना,
कृष्ण चंद्र
पूर्ण चंद्र को देख के कृष्ण चंद्र. फिर चैतन्य महाप्रभु का नाम है मायापुर चंद्र, तो मायापुर के चांद के समान है. कृष्ण भी है वृंदावन चंद्र, तो भगवान कृष्ण भगवान श्री गौरंग महाप्रभु की तुलना ओपन अप द इंडेक्स. तो श्री कृष्ण की तुलना चांद से की जाती है, क्योंकि चांद पूर्णिमा का चांद बहुत सुंदर होता है, बहुत शुद्ध माना जाता है. इंडेक्स इंडेक्स नॉट टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स. और तो इसलिए भगवान की तुलना चांद से भी की जाती है. कैसी चीजों को ढूंढना है ये भी हमको समझना है। हाँ, तो भगवान का मुख भी वंशी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान जेना देखे से चांद वदन से नयने की बाकाज ओडुकतार मुंडे वाज से नयन रही की कारण। वो आंखों का मूल्य क्या है, से नयन रहे के कारण, वो नयन जो है उनका क्या उपयोग है, ये भी उन आँखों से जेना देखे से चांद वदन, वदन मतलब मुख, चांद मतलब चांद, तो भगवान का मुख जो चांद के समान है, जिन आँखों से को नहीं देखता है, तो ऐसे आँखों का क्या मतलब है, कोई उपयोग ही नहीं है उनका। और उनका मुख जो है वो न केवल चांद के समान है परंतु लावण्य अमृत जन्म स्थान। तो वो जो सौंदर्य का उद्गम है वंशी गानामृत धाम, और वंशी का जो गान है उसके अमृत का वो उद्गम है ऐसे, लेकिन वो मुझे ठीक अभी यहाँ इसमें नहीं हो रहा है। साढ़े चौबीस कितने, तीन और रह गए ने, नख बीस हो गए, दस और दस, और मुखारविंद संपूर्ण एक हो गया, इक्कीस हो गए। उनका तो आधा बिंदु है ऐसा, वो आधा हो गया। और तीन कौन से हैं, उनके कमल नयन, शायद दो आंखें भी होंगी और उनके दो गाल भी होंगे, ऐसे ऐसे कुछ है। तो वो भगवान श्री कृष्ण की तुलना ऐसे चांद से की जाती है। लेकिन ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि साढ़े चौबीस धन्यवाद। तो श्री कृष्ण की तुलना चांद से अलग अलग तरह से की जाती है। जब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे तो उनको ये संशय हुआ कि ये वास्तव में वापस लाना, गलती हो गया। आज मैंने व्रत लिया अंजनानंदन प्रभु कसरत कराने के लिए। ये काम गायत्री मंत्र का रूप है, तो काम गायत्री मंत्र देखे वो आ जाएगा, फिर निकलेगा इसका। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मन में संशय हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, आधा अक्षर कहाँ से आ सकता है। ऐसे अभी मिल जाएगा। यहाँ मिल गया फिर। कृष्ण मुख द्विजराज राज कृष्ण वपु सिंहासने वशी राज्य शासने करे संगे चंद्रेर समाज। तो भगवान श्री कृष्ण का जो मुख चेहरा है, वदन है, वो चंद्रमाओं का राजा है। बहुत सारे चंद्र हैं, उनमें से सारे चंद्रों का राजा कृष्ण का मुख है। और कृष्ण का जो शरीर है वो सिंहासन है जिसके ऊपर ये राजा बैठा है। ये चेहरा किसके ऊपर बैठता है? शरीर के ऊपर बैठता है ना। तो कृष्ण का चेहरा चांद चंद्रमाओं का राजा है। और कौन से सिंहासन पे बैठा है? कृष्ण के शरीर। और इस तरह से वो चंद्रमाओं के समाज के ऊपर राज करते हैं, ठीक है। तो दुई गंड शुचि कन, तो उनके दो गाल हैं, वो पूर्ण चंद्र है। वो कोई गिनती करने जाना है, दो गाल पूर्ण चंद्र हो गए। फिर उनका जो कपाल है वो आधा चंद्रमा है। और जो चंदन बिंदु है वो भी एक पूर्ण बिंदु है। फिर उनके करकमल के नख वो 10 पूर्ण चंद्रमा हुए। और उनके चरण कमलों के नख वो भी 10 हो गए। कितने हो गए? 24। कौन से बताओ? नख 20 हो गए, चेहरा 21, दो गाल 23, 24 चंदन बिंदु और कपाल आधा, तो 24.5 हो गए। और एक काम गायत्री मंत्र बोल के है, आप में से जिन जब दूसरी दीक्षा होगी आपको ये मंत्र मिलेगा। अनेक गायत्री मंत्रों में से ये भी एक जाप करना होगा दिन में। तो ये भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर ये काम गायत्री मंत्र का ही रूप है। और इनकी तुलना हर एक अक्षर की तुलना चांद से की गई है, इसलिए यहाँ पे आया। तो कौन से हैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के 24.5 चांद कौन से हैं? कौन बताएंगे?
10 उनके चरण कमलों के नख दसों के कर कमलों के न एक उनका मुखमंडल, आधा कपाल कपोल, फिर एक उनका बिंदु
चंदन बिंदु, तो कितने हो गए?
24.5।
और कौन बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के देवी शरीर की तुलना चांद से कैसे की जाती है? 24.5 कौन बताएंगे? क्या
किशोर
को बताएंगे? हाँ बोलो।
20 नाखून,
हाँ,
2 गाल,
हाँ,
1 मुख कमल,
हाँ,
1 बिंदु,
हाँ,
और आधा कपाल।
कपाल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, छान छान। तो ऐसे 24.5 चंद्रमा, ठीक है। तो ये आता है कहाँ पे? मध्य लीला के 21वें अध्याय में, ठीक है। ऐसी ऐसी बचपन नहीं आती है, बाद में ऐसा रोना शुरू। एक बार बड़े हो गए तो संसार का प्रचार है कि नहीं? तो ठीक है, ये उद्दीपन हो गए। तो ये सारा गीत ही उद्दीपन। युगल विलासाचे अनुकूल जाणून यांना मी लीला विलासाचे उद्दीपक मानतो। मैं इन चीजों को उद्दीपक मानता हूं, लीला विलास युगल विलास के लिए। लीला विलास उनके, तो उनका स्मरण होता है सबका दर्शन करके। कृष्ण का स्मरण आता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो तिलक का उद्देश्य भी होता है। तिलक हम धारण क्यों करते हैं?
कृष्ण का स्मरण।
हाँ, अनेक कारण होते हैं, उनमें से एक कारण यह होता है कि हम जब तिलक धारण करते हैं तो देखने वाले को कृष्ण का स्मरण होता है, तो उसके लिए उद्दीपक हो जाता है। हम अपने तिलक को नहीं देख सकते जब तक हम आईने के सामने नहीं जाएंगे, परंतु सामने वाला आदमी वो देखता है, पता चला ये कृष्ण का भक्त है, ये हरे कृष्ण वाला है, तो तुरंत उनके मन में या मुख पे ये हरे कृष्ण निकलता है। तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसे, हम का वस्त्र पहनते हैं, सर मुंडवाते हैं, ये सब क्यों? ताकि लोगों को पता चले, हमारे लिए भी है और अन्यों के लिए भी है। कंठी माला ये सब, ठीक है। तो आज इस चर्चा का श्रेय जाता है देवकी तनय प्रभु, क्योंकि देवकी तनय प्रभु का चुना ये गीत होना चाहिए आज। तो आज हमारे लिए उद्दीपक कौन बने? देवकी तनय प्रभु के कारण आज हम समझ पाए कि श्री कृष्ण को कैसे 24.5 चांद से तुलना की जाती है। हरे कृष्णा। और आदिरस प्रभु ने भी अच्छा गाया। हम थोड़ा अलग से उसमें गाते थे, ये गुण गाएंगे, अच्छा है। हम लोग जब इस तरह का भजन गाते थे तो भक्ति विनोद कहे सुनो काना, भक्ति विनोद कहे सुनो काना, तुआ ओ दीपक हमार पराना। स्वागत स्वागत